शुरू होता है इसी मंत्र से, उषम हवैवाज श्रवस सर्व वेद सं ददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस तम कुमारं संतं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेश सोमन्यत। इसका मतलब है, ये कहानी है, एक दिन की बात है, वाजश्रव ऋषि का बेटा जिसका नाम उद्दालक है, उसने सर्वजित यज्ञ किया। ये जो सर्वजित या विश्वजित यज्ञ होता है, दुनिया को जीतने के लिए, पॉलिटिकली नहीं, पॉलिटिकली भी होता है, राजा लोग भी करते हैं, ब्राह्मण भी करते थे, यश पाने के लिए, कीर्ति पाने के लिए, राज्य पाने के लिए, पूरे विश्व में नाम कमाने के लिए। और उस यज्ञ का नियम है कि उसमें आपको सब कुछ देना पड़ेगा, दान करना पड़ेगा। देना क्यों पड़ेगा, एक व्यक्ति क्यों दे रहा है, क्योंकि बदले में उसको विश्व विजयी बनना है। यज्ञ का अर्थ होता है त्याग। जब त्याग कुछ पाने के लिए होता है, वो त्याग नहीं होता, वो व्यापार होता है, दुकानदारी होती है, सौदा होता है। जब आप दुकानदार को पैसा देते हैं, तो आप ये नहीं कहते कि मैं दान कर रहा हूं। जब हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं, जिसके बदले हमें 2 साल 3 साल के बाद कमाई होगी, तो हम ये सोचते नहीं कि मैंने त्याग किया, क्योंकि बदले में कुछ मिलता है। जहां भी बदले में कुछ मिलने की भावना हो, वहां तक कोई त्याग होता नहीं है, कोई यज्ञ नहीं होता, कोई दान नहीं होता। पर समस्या है कि धर्म सौदा की चीज नहीं है, पर दुनिया में धर्म को सौदा के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहां तक कि हम ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं, फ्री में नहीं, बदले में कुछ चाहिए। हम ईश्वर से भी दुकानदारी ही करते हैं, और जहां तक सौदा है, जहां तक दुकानदारी है, जहां तक व्यापार है, वहां तक ना धर्म है ना वहां तक ईश्वर है। इसलिए करोड़ों लोग करोड़ों सालों से मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, घरों में, तीर्थों में ईश्वर की पूजा उपासना करते हैं, उसके बावजूद भी दुखी, परेशान, डिप्रेस, निराश, हताश है, क्योंकि व्यापार में ये सारे सिम्टम व्यापार में दिखते हैं। ये जो लक्षण है, हताश, निराश, दुखी, ये व्यापार में स्वाभाविक है, क्योंकि धर्म के साथ, ईश्वर के साथ भी हम यही चीज जोड़ देते हैं, तो हम भी वैसे ही होते हैं जिंदगी भर। वाजश्रव का बेटा उद्दालक ब्राह्मण है, ज्ञानी है, विद्वान है, समझदार है, तो उस वो भी यज्ञ कर रहा है क्योंकि समझदार है। और समझदारी का मतलब हमारे यहां समझा जाता है, जो कुछ भी कर रहे हैं उससे पहले सोचे कि इसके बदले क्या होगा। अगर ऐसा कुछ सोचा नहीं तो वो भोला है, बुद्धू है, बेवकूफ है, बच्चा है। उद्दालक विश्वजित यज्ञ कर रहा है संसार जीतने के लिए, दान दे रहा है, यश मिलेगी, मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, दान कर रहा है, अहंकार की तृप्ति होगी। हमारे यहां जो प्राचीन काल की जो कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं, जब ये मूर्ति पूजा वगैरह की व्यवस्था बनी नहीं थी, यज्ञ की व्यवस्था थी। रामायण में, महाभारत में, पुराणों में जो आप कहानियां देखते हैं, हर कोई यज्ञ करता था। असुर भी, राक्षस भी यज्ञ करते थे, ऋषि मुनि भी यज्ञ करते थे। तो दोनों में फर्क क्या होता था? एक राक्षस क्यों है, एक ऋषि क्यों है? क्योंकि राक्षस जब भी यज्ञ करता था कुछ पाने के लिए, उसको वर चाहिए, उसको दुनिया जीतना है, उसको राज्य चाहिए, उसको सुख चाहिए, उसको अमर बनना है। कोई भी राक्षस जब भी यज्ञ किया बदले में कुछ चाहिए। ऋषि जीवन भर यज्ञ करते हैं पर जंगल में फटीचर हालत में फक्कड़ होकर के रहते हैं। शाम को क्या खाना, सुबह अगर किसी घर में मिल जाए तो वो सन्यासी नहीं कहलाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। अगर ऐसा कोई सन्यासी मिले, इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, शास्त्रों में यही लिखा है कि शाम को क्या खाएगा ये चीज अगर किसी के घर में मिल जाए तो वो सन्यासी हो ही नहीं सकता। सुबह क्या खाएगा, मतलब परिग्रह, संग्रह करने की वृत्ति जहां तक है वो सन्यासी हो ही नहीं सकता, ऋषि हो ही नहीं सकता। ऋषि मुनि भी यज्ञ करते थे, राक्षस भी यज्ञ करते थे, अंतर क्या था? क्योंकि बदले में कुछ चाहते थे इसीलिए वो राक्षस हैं, असुर हैं। मेरा दान अगर कुछ उद्देश्य के लिए है, कुछ पाने के लिए है, तो मेरे अंदर वही राक्षसी और आसुरी वृत्ति पनपती है। जब मेरा दान बिना किसी पाने की चाहत से होता है तो वो सही दान कहलाता है। उद्दालक दान कर रहा है यश के लिए, उसको विश्व विजयी बनना है, यश पाना है, कीर्ति पाना है, अहंकार की तृप्ति करनी है। ये अहंकार बड़े कमाल की चीज है, हमारे अंदर बड़े से बड़ी बुराइयां हमारे से करवा देता है, बड़ी सी बड़ी अच्छाइयां भी करा देता है, ये अहंकार है। यज्ञ अच्छी अच्छा चीज है, अहंकार की तृप्ति धन के इकट्ठा करने से भी होती है, धन त्यागने से भी अहंकार अहंकार को तुष्टि मिलती है। देखो मैंने त्याग दिया, क्या रखा है, सब कमा रहे हैं, मैंने छोड़ दिया। जो कमा रहा है उसको भी अपना अकड़ है, मेरे पास इतना है, देखो सब गरीब हैं, रिक्शे में जा रहे हैं, साइकिल में जा रहे हैं, कीड़े मकोड़े। जिसने गाड़ियां छोड़ दी, चप्पल पहनना भी छोड़ दिया, पैदल चला, उसका अपना अकड़ है, देखो सब धन बटोर रहे हैं, मैंने सब छोड़ दिया है। अहंकार बड़ी विचित्र मानसिक स्थिति है, वो देने में भी लेने में भी दोनों तरह भी होता है। वो सिर्फ दूसरों को तड़पाता नहीं है, खुद को भी तड़पाता है। व्यक्ति अहंकार की तृप्ति के लिए परिवार भी छोड़ सकता है, पत्नी या पति को भी छोड़ सकता है, बच्चों को भी छोड़ सकता है, धन दौलत भी छोड़ सकता है, जमीन जायदाद भी छोड़ सकता है, बटोर सकता है, तो हमें पता है, जो पता नहीं वो बता रहा हूं कि ये छोड़ भी सकता है। सिर्फ इतना नहीं, खुद को भी तड़पा सकता है। फ्रांस में 18वीं सदी में एक संप्रदाय था, ऐसा नहीं कि भारत में सब पोंगापंथी मिलते हैं, ये आपके अमेरिका में भी बहुत है, पढ़े लिखे पोंगापंथी तो बहुत होते हैं। तो फ्रांस में एक संप्रदाय था, उसका नाम था कोड़ामार संप्रदाय। जो अपने आप को जितना ज्यादा कोड़ा मारे उतना ज्यादा वो ईश्वर को प्रिय होगा। 5 साल पहले कनाडा में एक ही रात को 78 लोग सुइसाइड कर गए कि उस रात को जो मरेंगे सब स्वर्ग जाएंगे। क्यों मारते थे? जिसके शरीर में जितने घाव है वो उतना बड़ा धार्मिक है। हमारे बाबाओं को जरा देखिए, दुग्धाहारी बाबा, मतलब ये खाना नहीं खाते हैं, खाना त्याग दिया है, केवल दूध पीते हैं। दूध पी के किस पर एहसान कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस तुम खाना खा सकते हो, देखो मैं खाना छोड़ के दूध पी के रह सकता हूं। अहंकार की तृप्ति हो रही है, बस वो खाना छोड़ दिया, उसका भी मन करता है, पर क्या है, दुग्धाहार करते ही हजारों लोग पैर में गिरने लग गए। बाबा जी फलाहारी बाबा, इनकी क्या विशेषताएं हैं? ये सिर्फ फल आहार करते हैं, आ गए लाखों लोग चरणों में, खाना खा करके क्या होता है, पड़ोसी भी पूछने नहीं आता है। कभी कुंभ मेला में आप जाएंगे, जो तीर्थ क्षेत्र जाएंगे, बाबाओं को देखेंगे, किस टाइप का बाबा है? आपकी क्या विशेषता? एक टांग में मैं 12 साल से खड़ा हूं, वो दूसरा टांग सीधा ही नहीं हो रहा है। कितने आप 10 मिनट खड़े हुए कितना दर्द है, वो 12 साल से चलो बाद में तो आदत पड़ गया, कितना दर्द हुआ उसको होगा, कितनी परेशानियां हुई होगी, वो जिंदगी भर चल नहीं पाता है। ये सब उसने क्यों झेला, ये दर्द वो क्यों झेल रहा है? उसको अपनी अहंकार की तृप्ति हो रही है, लोगों से सम्मान मिलता है, और कुछ नहीं है। अहंकार का गणित बिल्कुल साफ है, वो महल में भी हो सकता है, झोपड़ी में भी हो सकता है। महल में होने का अहंकार है, देखो मैंने महल बनाया। झोपड़ी में होने का अहंकार है कि देखो मैंने महल त्याग दिया। तो व्यक्ति अहंकार के लिए कुछ भी कर सकता है। तो उद्दालक ऋषि ने यज्ञ किया, और वो यज्ञ था जिसमें सब कुछ दिया जा सकता है, और उसका एक बेटा था 7-8 साल का, जिसका नाम था नचिकेता। नचिकेता का अर्थ होता है जिसका चिकेत बोध समझ कम है। बच्चा तो वैसे ही अबोध होता है, कम समझदार होता है, मां बाप के लिए तो बच्चा वैसे ही ना समझ है। यज्ञ चल रहा था, दान देना था, और वाजश्रवा ऋषि गायें दान में दे रही थे, और वो गायें कैसी थी? पीतो दका जद्ध त्रिणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया, जरा स्लाइड देते, अनंदा नाम ते लोका स्थान सगच्छति ताददत। वो गायें बुढ़ी हो गई थी, जितना पानी पीना था पी चुकी थी, मतलब अब पीने लायक नहीं रही। जो घास खाना था वो खा चुके हैं, अब घास खाने लायक नहीं है, दांत गिर चुके हैं। दुग्ध दोहा, जो दूध देने लायक वो दे चुके हैं, अब वो दूध उनसे निकलता नहीं है। निरिंद्रिया, शरीर ढीला पड़ चुका है और बॉडी काम नहीं करता, ऐसी गायों को दान में दे रहे थे। बच्चे ने देखा, बच्चे को अच्छा नहीं लगा, ये बुढ़ी बुढ़ी बीमार कमजोर गायों को दान में दे रहे। वैसे कभी कभी ऐसा बहुत बार होता है, बाप को जो दिखता नहीं है वो बच्चे को दिखता है। बाप को नहीं दिखा कि इस दान में क्या गड़बड़ियां है, पर छोटे बच्चे को लगा कि ये कुछ गड़बड़ियां है। बहुत बार बच्चा बाप से ज्यादा समझदार होता है। सच तो ये है, बच्चे का मन बाप से ज्यादा निर्दोष होता है, ज्यादा निर्मल होता है, ज्यादा शुद्ध होता है। अभी दुनियादारी का पाठ पढ़ा नहीं है, इसीलिए ईमानदार है, सच्चा है, ईमानदार होता है। बच्चा निर्मल हृदय होता है, जो उसके मुंह में है वो बोलता है, जो उसको लगता है वो बोलता है, जो अच्छा है बुरा है वो बोलता है। वो पढ़ लिख करके नहीं, उसका इंट्यूशन है, उसे उसका भाव है। इसमें बच्चे को कोई गर्व करने की बात नहीं है कि भाई मैं बड़ा सीधा साधा सरल हूं और मेरा बाप जरा टेढ़ा है। ये कुदरती है, ये प्राकृतिक है, ये नेचुरल है। ये बाप जो कुटिल है, ये भी जो बच्चा था, ये भी सीधा साधा भोला भाला निर्दोष निर्मल हृदय वाला ही था। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, दुनियादारी हमें सिखाई जाती है, दुनियादारी के नाम पर हम निर्मल से मलिन मन वाले हो जाते हैं, निर्दोष से दुष्ट मन वाले हो जाते हैं। हमारा मन जटिल कुटिल छल कपट झूठ फरेब पाखंड में भरता जाता है। बड़े होने के साथ साथ हमारा मन की जो सफाइयां है, जो जो साफगोई है, जो सीधापन है, जो सादापन है, वो खत्म होता जाता है। शिक्षा जो एजुकेशन है, इसका सिर्फ एक ही काम है जो मॉडर्न एजुकेशन है, कि ये आपके निर्दोष मन को निर्मल मन को मैला बनाना सिखाती है। नहीं तो आप व्यापार कैसे करोगे, दूसरों से डील कैसे करोगे, दूसरों के साथ कैसे चलोगे। जिसको हम सभ्यता कहते हैं ना, इंसान जितना अंदर से ऊपर से झूठा व्यवहार करे उतना वो सिविलाइज्ड माना जाता है। जितना वो सच्चा नेचुरल प्राकृतिक व्यवहार करे उतना वो जंगली जाहिल आदिवासी असभ्य कहलाता है। आप मेरे पास आए, आपको देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने बोला जी मैं खुश नहीं हूं आपको देखकर, लोग कहेंगे कितना खड़ूस है, जाहिल है, ऐसे बोलता है। तो हम क्या करते हैं, सामने वाले पर गुस्सा तो आता है तो भी दांत दिखाते हैं। ये सभ्यता है, ये सिविलाइजेशन है। अगर गुस्सा आया और आपने गुस्सा कर दिया, ये अनसिविलाइज्ड है। मतलब सभ्यता सिखाती है बेईमान बनने के लिए। ये हमारी हमारी शिक्षा है, ये हमारी सिस्टम है, हम यही सीखते हैं बचपन से। बच्चे को बुरा लगा, अंकल ने कुछ गलत हरकत किया, बोला ये अंकल गंदा है, बाप ने कहा चुप अंकल है, ऐसे थोड़े ही बोलते, नहीं पापा ये गंदा है, सॉरी बोलो, बड़े को ऐसे नहीं बोलते, बड़ा है, पापा ये गंदा है, बड़ों के सामने बदतमीजी करते हो, सॉरी बोलो। बेटे का ज्यादा बोलने का हिम्मत नहीं, सॉरी बोलता है, फिर सोचता है कहां मेरी गलती रह गई, मेरे साथ बदतमीजी अंकल ने किया, सॉरी मुझे बोलना पड़ रहा है। वो बाद में सीख गया, बेईमानी जिंदगी है। जितना हम पढ़े लिखे जाते हैं, हमारी जो जो सीधापन है, जो सरलता है, जो जो सच्चाई है, वो दबती जाती है। पर बचपन प्राकृतिक है, उसमें गर्व करने की कोई बात नहीं है। हर बड़ा आदमी, उम्र दराज आदमी खुद बचपन से गुजरा है, और वो भी कभी सीधा था भोला था। पर खास बात यह है, बच्चे के बचपन पर कोई गर्व का अधिकार नहीं है, नेचुरल है। पर कोई बड़ा आदमी उम्र में बड़ा होने के बावजूद, पढ़ा लिखा होने के बावजूद, आज भी अगर वो बच्चा जैसा है तो वो संत साधु से कम नहीं है। पढ़ा लिखा आदमी अगर बच्चा जैसा हरकत करने लगे तो वो ऐसे बड़े बिरले हैं और वो साधु संत से कम नहीं है। बड़े उम्र में बच्चे का भाव रहे मुश्किल है, जिनमें है महान है। बच्चे में जो सरलता है वो प्राकृतिक है, कुदरती है, वो बच्चे के उसमें कुछ हक नहीं है। आमतौर पर माँ बाप को लगता है बच्चे नासमझ है, क्या बोलता है उसको पता नहीं दुनियादारी। बच्चों को भी लगता है माँ बाप बड़े नासमझ हैं, क्योंकि दोनों की दुनिया अलग अलग है, दोनों की सोच का स्तर अलग अलग है। ऐसा नहीं कि बड़ों का स्तर बहुत बड़ा है। बच्चा जब रंगीन तितलियों के पीछे दौड़ता है खुशी में खुशी में, या कोई चिड़िया जब चींची करता है वो उछलता है, माँ बाप को लगता है देखो बेचारा नासमझ है, बच्चा है, भोला भोला है। और वो बच्चा बाप के हाथ खींचता है, आ जाओ देखो देखो तितलियां दौड़ती है कैसे, छोड़ गया बकवास बच्चे वाली ये बात करते हो तो देख। बाप जब बैठ के पैसे गिनता है बच्चे को लगता है कितना बेवकूफ है मेरे पापा, गंदे गंदे कागज गिनता रहता है और मेरे साथ ये रंगीन तितलियों का मजा नहीं लेता है, बेकार के टाइम बर्बाद करता है, उसकी बस चले वो नोट फेंक देगा। ऐसा नहीं कि हमारे नजर में हमारा बच्चा नासमझ है, बच्चे के नजर में हम ही नासमझ होते हैं, क्योंकि दोनों की दुनिया अलग अलग है, दोनों की सोच अलग अलग है, इसीलिए हम एक दूसरे को नासमझ समझते हैं। एक बार एक परिवार में बड़ा बेटा छोटे बेटे को बड़े ने छोटे भाई को मारा। पिटाई की बच्चों में लड़ाइयां होती रहती है जो बड़े छोटे होते हैं। बाप ने बड़े को डांटा, कितने बार कहा छोटे को मत मारा करो, छोटों को नहीं मारते, क्यों नहीं समझते, कह के एक चांटा लगाया। बड़ा सोचने लगा, बाप ने कहा छोटे को मारना बुरा है, मैं भी तो छोटा हूं बाप से। उसको समझ आ गया कि छोटों का मतलब है जब तक तुम इतना ताकतवर ना बन पाओ कि दूसरे को हैंडल कर सको तब तक नहीं मारना। फिर वो बाप जैसा बड़ा हो जाता है तब बाप बच्चा होता है, बुढ़ा होकर के बच्चे जैसा हो जाता है, कमजोर शरीर वाला तब वो जो कल बच्चा था जिसको हमने ही पढ़ाया था छोटे को बच्चे मत मारो कह के मारा था, वो बच्चा अब बड़ा है, बाप अब छोटा है बच्चा है, अब वो उस बच्चे वाले बाप को मारता है हाथ से नहीं सैकड़ों तरकीबों से। बाप को हमेशा चुभता है, दर्द होता है, पी जाता है, पड़ोसी से बांट नहीं सकता, बीवी से या बीवी हो पति से बांट सकते हैं और पड़ोसी में भी तारीफ करेंगे मेरा बच्चा तो दुनिया में अकेला सबसे यूनिक है, पर वो दर्द खुद एहसास करते हैं। वो कहां से सीखा, हमारी सीख है, जो बीज बोया है वही काटते हैं। कि जब तक तुम्हारे सामने कोई और बड़ा है ताकतवर है तुम मत मारो, जब तुम इतना ताकतवर बनो किसी को भी मार सकते हो तब मार सकते हो। बच्चा मां बाप के प्रवचन नहीं सीखता है, वो आचरण से सीखता है। हमें लगता है बच्चा कुछ देखता नहीं, वो खेल रहा है, आप कुछ हरकत हम कुछ हरकत कर रहे हैं, वो आपके हर चीज को नोट करता है, बस ये कि वो कमजोर है, वो आपको जवाब नहीं दे पाता क्योंकि मां बाप हड़का देते हैं, धमका देते हैं, चुप करा देते हैं। बच्चे की जो भाषा है मां बाप की समझ में कम आती है, पर बच्चे की भाषा क्या है, बिल्कुल सच्ची सीधी भोली भाली सीधी सीधा और सपाट। जब बच्चे की भाषा समझ में आ जाए तो समझ लेना उपनिषद की भाषा भी समझ में आ जाएगी। उपनिषद की भाषा भी बिल्कुल सीधी सादी भोली भाली, पर समझ में आना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो जो गैप है, ऐसा नहीं कि हम खुद बचपन से ही गुजर के गए हैं पर हम और बहुत कुछ सीख गए हैं, हम बहुत बड़े बड़े विद्वान हो चुके हैं तो छोटी छोटी बातें अब हमें समझ में कम आता है। सवाल है कि नचिकेता छोटा बच्चा है, उसकी नासमझी कहिए जो भी कहिए, उसको ये बुरा लगा, उसने पापा से बोला, ये क्या दान दे रहे हो, बूढ़े बूढ़ी गायों को क्यों दान में दे रहे हो। पिता को लगा ये नासमझ है, इसको समझदारी नहीं है, दुनिया का गणित पता नहीं है, हिसाब किताब जो जोड़ और घटा इसको पता नहीं है। उद्दालक विद्वान था, अच्छी तरह गणित जानता था, जरूरी नहीं गणित के लिए अलजेब्रा ज्योमेट्री पढ़ना पड़े, दुनिया की गणित, जोड़ा घटा, किसके साथ रिलेशन रखूं किसके साथ नहीं, किसके साथ हंसूं किसके साथ नहीं, किसके साथ बात करूं किसके साथ नहीं, कैसे बात करूं, ये जो जोड़ और घटा। पर बच्चे को लगा ये गलत है, मेरे पिताजी जिस तरह के गायों को दान में देते हैं उसमें अमंदा नामते लोका तांता गच्छति ताददत सह, जो व्यक्ति ऐसे गायों को दान में देता है वो ऐसे लोक में जाते हैं जहां कोई सुख नहीं। इसका भावार्थ है आप अपनी बेकार की चीजें जब दूसरों को दान में देते हैं, जो दूसरों को भी काम नहीं आ सकता, आपके भी काम नहीं आया, दूसरों को भी नहीं आ सकता, आप सिर्फ अपने गैरेज खाली करना चाहते हैं इसीलिए दान देते हैं, ऐसे दान से तो पुण्य तो सवाल नहीं उठता, उल्टा ज्यादा दुख होता है। क्योंकि ऐसा दान कब देता है, जब व्यक्ति चालाक होता है, चालाकी करता है। चालाकी हम पढ़ाई लिखाई से सीखते हैं, उम्र के साथ साथ सीखते हैं, पर समस्या है कि हम ईश्वर के साथ भी चालाकी करते हैं। ईश्वर के साथ चालाकी, मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं, 5 किलो फल आया, 1 अंगूर छोड़ दिया। अगर ईश्वर 5 किलो के 5 किलो अंगूर खाने लगे तो मंदिर का तरफ कोई देखेगा भी नहीं, बस 1 केला दे चढ़ा सकता है। सस्ते में निपटा सकते हो तो मेरे ईश्वर हो, नहीं तो दुनिया में बहुत सारे ईश्वर हैं और भी कहीं जा सकता, बस मेरी मजबूरी है, मुझे कोई ज्यादा भरोसा नहीं तुम पर क्या करूं, बीमार चल रहा हूं, जब छूट गया वगैरह वगैरह, घर नहीं बन पा रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, मुझे किसी ने कहा कि रोज आधा घंटा कुछ ध्यान करो प्रार्थना करो, करना पड़ रहा है, आधा घंटा मेरे से नहीं होगा, हो गया बस, आप तो दे दे। 2 महीने 4 महीने 6 महीने देखा भगवान ने कुछ किया नहीं, मैंने दूसरा भगवान चेंज कर दिया, भगवान चेंज करके भी नहीं होता, लोग धर्म बदल देते हैं। धर्म बदलने का मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि लोग धर्म बदलते क्यों है, क्या भगवान दूसरे तरह की ज्यादा भोग देने वाले हैं, भगवान की कृपा ज्यादा हो जाएगी। सिर्फ स्वार्थ बुद्धि पाने की चाह। उद्दालक चालाक था, पढ़ा लिखा है, समझदार है, और ध्यान रखिए चालाक आदमी दुनिया जीतता है, हर मामले में सफल होता है, जो चालाक होता है वही सफल होता है। जिसको हम बेवकूफ कहते हैं, मतलब सीधा साधा, वो ज्यादातर जगह फेल होता है, पर चालाक आदमी कभी सुखी हो ही नहीं सकता, क्योंकि चालाकी का जो साइड इफेक्ट है वो है बेचैनी, बेचैन रहना, टेंशन में रहना, तनाव में रहना। मैं दुनिया का राजा बन सकता हूं, इतिहास में मेरा नाम हो सकता है, पर मैं एक रात ठीक से सो नहीं सकता, सुख नहीं होता। इसलिए नचिकेता तो अभी दुनियादारी सीखी नहीं है, सात आठ साल का बच्चा है, उसको लगता है मेरे पिताजी ये जिस तरह के काम कर रहे हैं उनको अमंद लोक में, ऐसे लोक में जाना पड़ेगा, ऐसी हालत में रहने पड़ेगा जिसमें उनको सुख नहीं मिलेगा, उसको ये अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो चालाक नहीं था। चालाक बुद्धि जितनी तीव्र होती है, जितना हम तर्क करने में, बहस करने में माहिर होते हैं, जितना हम दुनिया को समझाने में माहिर होते हैं, उतनी हमारी चालाकी बढ़ती है। इसलिए मैंने कहा शिक्षा हमें और को सिखाए ना सिखाए चालाकी सिखा देती है, कनिंग नेचर सिखा देता है। नास्तिक और आस्तिक में एक बेसिक अंतर है। नास्तिक ईश्वर को नहीं मानता क्योंकि वो तर्क करता है, वो गणित के गठजोड़ बनाता है, घटना जोड़ना बनाता है, तर्क करता है, वो अपनी चालाकी अपनी बुद्धि से साबित कर देता है ईश्वर नहीं है। आस्तिक ईश्वर को साबित कर ही नहीं सकता। आप मुझे पूछेंगे रसगुल्ले का स्वाद कैसा है, मैं कहूंगा बहुत अच्छा है। आप लॉजिक दोगे रसगुल्ला अच्छा नहीं है, कभी खाया नहीं है, पर आप सो लॉजिक दोगे वो जिस चीज से बना, ऐसे बना वैसे बना, उसमें ये केमिकल हुआ, वो जब इतनी डिग्री में गर्म हुआ उसका ये केमिकल हो गया। आपने समझा? मुझे पता है रसगुल्ला कितना मजेदार है, पर मैं आप तक कैसे कन्वे करूंगा? सिर्फ कह सकता हूं एक्सपीरियंस करो, रियलाइज करो, खा कर देखो। मेरे पास तर्क करने के लिए कुछ नहीं है, रसगुल्ला अच्छा मीठा है, टेस्टी है। जो रसगुल्ला चखा नहीं है वो सैकड़ों प्रमाण देगा, सैकड़ों तर्क देगा रसगुल्ला स्वाद नहीं है, पर जिसको रसगुल्ले का मजा आता है उसकी प्रॉब्लम है कि वो आपको तर्कों से समझा नहीं सकता कि रसगुल्ला कितना मजेदार है। आप खा कर ही एहसास कर सकते हो। जिसने ईश्वर को अनुभव किया है, जिसमें तभी आस्तिकता आई है, वो कैसे आपको बताएगा कि वो ईश्वर क्या है? अनुभव का विषय है ये, लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करने का नहीं, वो अंदर एक्सपेरिमेंट करने का विषय है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए, साइंस कभी भी ईश्वर को नहीं मानता, और मेरा मानना है जो साइंटिस्ट ईश्वर को मानता है वो असली साइंटिस्ट है ही नहीं है। दोबारा सुनाओ, कहीं आप गलतफहमी में कुछ उल्टा सुन लिया हो। जो साइंटिस्ट ईश्वर को मानता है वो साइंटिस्ट है ही नहीं, क्योंकि साइंस में ईश्वर प्रूफ हो ही नहीं सकता। तर्कों से, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट से नहीं हो सकता, केवल मैटर, केवल पदार्थ ही साबित हो सकता है। इसीलिए वो उसका विषय ही नहीं है। जब तक मैं साइंटिस्ट हूं तब तक मैं ईश्वर को मानने के लिए मुझे अपने साइंटिफिक वे से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि दो अलग अलग रास्ता है, दोनों को जानने का अलग अलग तरीका है। नास्तिक तर्कों से साबित कर देता है, आस्तिक तर्क नहीं दे सकता। एक छोटी सी सुंदर कहानी है, कह के बात को समाप्त करूंगा, समय हो रहा है। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरु कोलकाता में, उनका बड़ा नाम था, यश था, उनके समय में काफी लोग आते थे। उन दिनों एक केशव चंद्र करके हुआ करते थे, जो एथिस्ट थे, नास्तिक थे, बाद में ब्राह्म समाज से भी जुड़े और बहुत सारी चीजें, समाज सुधार आंदोलन भी किया, पर वो नास्तिक थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। पर केशव चंद्र रामकृष्ण के पास आया करते थे बहस करने के लिए, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे थे, अंग्रेजी उन दिनों अंग्रेजी पढ़े लिखे थे और विद्वान थे, मॉडर्न एजुकेशन के बड़े विद्वान थे, तो बहस करते थे ईश्वर नहीं ये साबित करने के लिए। रामकृष्ण कुछ नहीं बोलते थे, जब वो बहस करके, जब वो तर्क दे करके खत्म हो जाता था तो उसे गले लगाते थे, उसको चुम देते थे। वैसे रोज रोज होता था। लोगों को लगा कि आप जवाब क्यों नहीं देते हो, वो इतना ईश्वर का खंडन करता है, आप जवाब कुछ नहीं देते हो। वैसे रामकृष्ण ज्यादा प्रवचन प्रवचन तो करते नहीं थे। एक दिन केशव चंद्र ने कहा कि देखिए ये गलत बात है, मैं आपसे बहस करता हूं, इतने सारे खंडन मंडन करता, आप कुछ तो बोलिए। बोले क्या बोलूं, तू जो खंडन करता है ना, मैं तुझे देखता रहता हूं, इतनी बुद्धि, इतना तर्क, इतनी शार्प दिमाग, जरूर ईश्वर है, ईश्वर नहीं होता तो ये तुम्हारे में कैसे आता। मुझे ईश्वर पर श्रद्धा बढ़ रही है तेरी बुद्धि को देखकर, तर्क शक्ति को देख करके, तू थोड़ी पैदा किया है ये, इसीलिए मैं तुझे क्या बोलूं। केशव चंद्र चुप होकर निकल जाते थे। आगे की कहानी, तो कठ ऋषि कहते हैं नचिकेता को ये गणित, ये तर्क समझ में नहीं आया, क्योंकि ये दुनियादारी का तर्क है। वो सोचा ये चला कि पाप है, इससे दुख होता है, दुख का रास्ता है ये। आगे क्या हुआ बाकी का